ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीनी प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर इसी मार्गशीर्ष 17 कते से 20 कते तक रहेंगे चीन दौरे पर। रामेछाप की गोकुलगंगा गांवपालिका फरपू में हुई जीप दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत। सामाजिक संजाल का दुरूपयोग कर भ्रामक अभिव्यक्ति देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की गृह मंत्रालय ने दी है चेतावनी। और ऑस्ट्रेलियाई संसद में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल हुआ मंजूर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग के मैत्रीपूर्ण आमंत्रण पर इसी मार्गशीर्ष 17 कते से 20 कते तक चीन दौरे पर रहेंगे। दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री ओली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में भेंटवार्ता के कार्यक्रम है, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री ओली अपने चीनी समकक्षी ली के साथ द्विपक्षीय भेंटवार्ता कर आपसी हितों के विविध विषयों में विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रम चीन भ्रमण के दौरान निर्धारित हैं। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य भी होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, प्रधानमंत्री के आर्थिक एवं विकास सलाहकार डॉ युवराज खतिवड़ा, विभिन्न सांसदगण, विशिष्ट श्रेणी के सरकारी अधिकारीगण, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, संचारकर्मी लगातार शामिल रहेंगे। मार्गशीर्ष 20 कते उनके स्वदेश लौटने के कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि विश्व शांति और कल्याण के लिए बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार और अनुसरण करने की जरूरत है। आज लुम्बिनी में आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के तीसरे विशेष दीक्षांत समारोह एवं 20वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि लुम्बिनी को विश्व के ही शांति के शहर के रूप में स्थापित करने की जरूरत है। मौके पर प्रधानमंत्री ओली ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से अध्ययन पूरा कर चुके 289 विद्यार्थियों को दीक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। रामेछाप में हुई जीप दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 लोग घायल हो गए। काठमांडू से रामेछाप के बेताली की ओर जाती हुई जीप आज दोपहर गोकुलगंगा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 फरपू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में गोकुलगंगा वार्ड नंबर 4 बेताली के वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र बसनेत सहित 5 लोगों की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। उनके अलावा मरने वालों में जीप चालक मंथरी नगरपालिका 10 के हीरा बहादुर कार्की, गोकुलगंगा 5 की कविता कार्की और उनकी 7 वर्षीय बेटी स्वस्तिका खड़का सहित शामिल हैं। वहीं एक मृतक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। रोहतक की लमाहा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 18-18 साल के 2 युवकों की मौत हो गई। रोहतक की गरुड़ा नगरपालिका वार्ड नंबर 2 गिड़ही गुठी स्थित लमाहा नदी में नहाने के दौरान स्थानीय जितेंद्र शाह और राजीव शाह की मौत डूबने से हुई है, ये जानकारी पुलिस ने दी। गृह मंत्रालय ने सामाजिक संजाल का दुरूपयोग कर द्वेषपूर्ण और भ्रामक अभिव्यक्ति देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि सामाजिक सद्भाव और मर्यादा पर आंच डालने वाले और शांति सुव्यवस्था पर खलल पहुंचाने वाले को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि पिछले समय से कुछ लोग सामाजिक संजाल का दुरुपयोग कर कानून द्वारा निषेधित द्वेषपूर्ण और भ्रामक अभिव्यक्ति फैला रहे हैं, जिस पर गृह मंत्रालय का गंभीर ध्यान आकृष्ट हुआ है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता होने पर ही विकास निर्माण के कामों को गति मिलेगी। आज तनहो की भानु नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भंसार स्थित नया शहर विकास परियोजना के एकीकृत भवन का उद्घाटन करते हुए उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि हर एक नगरपालिका को विद्यालयों में रोजगारमूलक शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करने चाहिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि 2 प्रमुख दलों का सत्ता गठबंधन अगले 3 साल तक ऊपर नीचे नहीं होगा। स्यांगजा की काली गंडकी गांवपालिका के मिरमी में आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि इस भ्रम में न रहें कि सरकार गिर जाएगी। मंत्री गुरुंग ने कहा कि जिन पार्टियों के पास देश के निर्माण का कोई दृष्टिकोण नहीं है, वे अलग अलग समय पर आती हैं और गायब हो जाती हैं। सरकार के प्रवक्ता समेत रहे मंत्री गुरुंग ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा आसन्न चीन भ्रमण के दौरान विगत में हुए समझौतों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G थिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच आज चीन के छंदू में भेंटवार्ता हुई। भेंटवार्ता में उनके बीच नेपाल चीन संबंध के विविध पक्षों आपसी हितों के साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चीन दौरे लगायत विषयों में बातचीत हुई थी। परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को नेपाल भ्रमण का निमंत्रण भी दिया। इसी बीच आज शाम चीन के विदेश मंत्री वांग ने मंत्री डॉ राणा और नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था। बता दें कि मंत्री डॉ राणा कल शनिवार नेपाल वापस लौटेंगी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि अब समय आ गया है कि नेपाल विश्व शिक्षा व्यवस्था में खुद को प्रस्तुत करे। निजी तथा आवासीय विद्यालयों के छात्र संगठन पैबसन के आयोजन में आज से काठमांडू में शुरू हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र को एक दूसरे के सबल पक्ष का उपयोग करते हुए सहकार्य करें। कंचनपुर के शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज में आज से बाघ की गणना शुरू की गई है। निकुंज के जंगल क्षेत्र में कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से बाघ की गणना शुरू की गई है। ये जानकारी निकुंज कार्यालय ने दी। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठाकुरी ने कैमरा ऑन कर आज बाघ गणना का शुभारंभ किया। पशुपति क्षेत्र में दिवंगत पितृ की सदगति की कामना के साथ शाम को विधिपूर्वक पितरों के नाम पर अखंड दीपदान किया गया। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी के दिन पशुपति क्षेत्र में दिवंगत पितृ की सदगति की कामना के साथ शाम को विधिपूर्वक पितरों के नाम पर अखंड दीपदान किया जाता है। आज शाम से श्रद्धालु अपने दिवंगत पितृ के नाम पर अखंड दीपदान करते हैं और चतुर्दशी की सुबह सदबीज डालते हैं। हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी के दिन देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु बाला चतुर्दशी पर्व मनाने के लिए पशुपति क्षेत्र में आते हैं। निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय तह उपनिर्वाचन के परिणामों को वेबसाइट के माध्यम से देखने की व्यवस्था की है। आयोग की प्रवक्ता सह सचिव नीता पोखरेल अर्याल ने कहा है कि मतगणना के नतीजों के बारे में www.result.election.gov.np पर लॉग इन करके अपडेट प्राप्त किया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्रतिबंध कम से कम 12 महीने के बाद लागू किया जाएगा। अगर टेक कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि युवाओं को सोशल मीडिया के खतरे से बचाने के लिए ये कानून जरूरी है। कई अभिभावकों ने भी इस पर सहमति जताई है। हालांकि इस कानून के आलोचकों का सवाल है कि ये प्रतिबंध कैसे काम करेगा और इस पर गोपनीयता और सामाजिक संबंधों का क्या असर होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीनी प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर इसी मार्गशीर्ष 17 गते से 20 गते तक रहेंगे चीन दौरे पर। रामेछाप की गोकुलगंगा गांव पालिका फरपू में हुई जीप दुर्घटना में 5 लोगों की हुई मौत। सामाजिक संजाल का दुरुपयोग कर भ्रामक अभिव्यक्ति देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की गृह मंत्रालय ने दी है चेतावनी। और ऑस्ट्रेलियाई संसद में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल हुआ मंजूर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।